I think that Indians are extremely hardy people.
मैं सोचता हूँ कि भारतीय लोग बड़े मजबूत हैं.
I think if we had this kind of service in the United States with this heat, that there would be many people going to the hospital.
इस प्रकार की गर्मी में ऐसे लंबे समय तक सेवा यदि हम अमेरिका में रखेंगे तो मेरे ख्याल से 99% लोग अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे.
Brother Paul has had Brother John looking after me.
भाई जॉन है मेरी देखभाल कर रहे थे.
And John kept looking at me to see if I was still alive.
और भाई जॉन मुझको बार बार नजर मारते हुए देख रहे थे कि मैं जिंदा हूं या नहीं.
Very strong people you are.
सचमुच आप बड़े मजबूत हो, बड़े शक्तिशाली हो.
And I want to thank you for inviting this Jewish believer in Jesus to join your family.
प्रभु यीशु मसीह में एक यहूदी विश्वासी को अपने परिवार में शामिल करके निमंत्रण दिए. मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ.
Your hospitality is amazing to me.
मेरे लिए आपकी जो पहुनाई है मैं मेरा हृदय भर गया है.
When we have visitors to my home, my Punjabi wife does so much for them.
हमारे घर में जब लोग आते हैं और मेरी पंजाबी पत्नी है वो उनके लिए बहुत कुछ करती है.
And I would say to her, I wish you were as nice to me as you are to them.
मैं कभी कभी बोलता हूँ जितना पहुंचार आप उनकी करती हो यदि मेरे लिए भी करते तो मैं कितना खुश रहूंगा.
But I see that the way she's hospitable is not unique to her. All of you are like that.
प्रियो ये जो पहुनाई करने की बात है, सेवा करने की बात है, वो हम समूह के लिए लागू होता है.
Brother Paul told James to drive very slowly while I'm in the car.
भाई पॉल ने भाई जेम्स को ऐसे सूचना दी थी कि जब अंकल जी बैठेंगे तो आराम से गाड़ी चलाना.
He told them, "Don't go fast over the bumps."
कहता है हमारे तली हुई पापड़ के समान हमारे रास्ते हैं, थोड़ा थोड़ा सावधानी के साथ जोर से मत चलाना.
And don't honk the horn too much because Americans don't like that.
मैंने उनको ये भी बताया ज्यादा वो चोंगा मत मारना क्योंकि वो चोंगा सुनने से उनका दिमाग खराब हो जाता है.
Everything they've looked out for me.
सब कुछ उन्होंने मेरी देखभाल की.
I told them if they continue like this I'm going to move to India.
मैंने उनको बोला आखिर में ऐसी सेवा यदि दोगे तो मैं बहुत जल्दी इंडिया में ट्रांसफर लेकर आ जाऊंगा.
They said, "Brother, you're welcome."
उन्होंने कहा भाई जी आपका स्वागत है.
Thank you.
धन्यवाद.
And thank you again to all the people that have worked for this holy convocation. Many, many hours people have labored for this.
इस पवित्र महासभा के लिए बहुतों ने घंटों घंटा रात और दिन मेहनत किए. परिषद के सभाओं के लिए धन्यवाद.
And I see these many talented and trained educated engineers teaching children.
और मैंने देखा कि कितने अच्छे प्रशिक्षण पाए हुए इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं.
They've humbled themselves to teach the children the Bible.
बाइबल में से बच्चों को सिखाने के लिए वो अपने आप को नम्र कर लिए हैं.
Thank you for your service.
आपकी सेवा के लिए भी धन्यवाद.
And for all the many that are boiling rice and cooking curry to serve to thousands of people, thank you.
हजारों लोगों को गरम गरम चावल बनाते हैं, रोटी पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, गर्मी को सहते हुए आपको भी परमेश्वर का धन्यवाद.
And for all those that run the electronics and put this up on the web, thank you for your service.
जितनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में मदद किए और लाइव स्ट्रीमिंग में इसको डाले हैं, उनके लिए भी सेवा के लिए धन्यवाद.
And these Punjabi musicians playing, thank you for your playing the music for us.
और हमारे लिए जो पंजाब से आए ढोलकी बजाते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद.
Americans love the sound of the tabla.
तबला की जो आवाज है अमेरिका वालों को बड़ा पसंद है.
Thank you.
धन्यवाद.
Today we're going to look more strongly at this portion out of Matthew, which has been the theme of the convocation.
इस पवित्र महासभा के लिए जो मुख्य शीर्षक हमें दिया गया था, उसमें से और थोड़ा जोर देकर प्रभाव के साथ हम प्रभु से पाना चाहते हैं.
We're going to look at the word, faith, worship, and service. Word, faith, worship, and service.
वचन, विश्वास, आराधना और सेवा.
Let's look at Matthew chapter 4, verse 1 through 4.
मत्ती सुसमाचार चौथा अध्याय 1 से 4.
Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after he had fasted 40 days and 40 nights, he then became hungry. And the tempter came to him, "If you are the Son of God, command these stones become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God."
तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो. वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी. तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, "यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं." यीशु ने उत्तर दिया, "लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा."
When I was 20 years old, one brother from India named Brother Amrit Raj spoke to me about this portion.
मैं जब 20 साल का था तो इंडिया से एक भाई अमृत राज जो अभी प्रभु के साथ महिमा में है, उसने मुझसे इस भाग से बातें किया.
He said Jesus did battle with the devil by quoting scripture.
उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ वचन के द्वारा युद्ध किया.
The word of God was in the mouth of Jesus and that's how he would battle Satan.
परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख में था और इस रीति से उसने शैतान के विरोध में युद्ध कर सका.
Every time Satan came at him, he quoted scripture saying, "It is written."
जब कभी शैतान ने कुछ परीक्षा लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह ये कहकर कि ऐसा लिखा है, उसका सामना किया.
We survive and overcome the devil by the scripture, the power of the word of God.
परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम जिंदा रहते हैं और हम आगे बढ़ते हैं.
देवी वाक्य द्वारा हम जीवित होता हूं, मुझे कुछ बताएगा होता हूं. Satan waits for Jesus to become very hungry after a 40-day fast, and then he tempts him.
शैतान इंतजार करता रहा ये 40 दिन और 40 रात का उपवास कब खत्म होगा और जब बहुत निर्बल और भूखा और कमजोर हो गया तब वो आता उसके पास
When we become weak, the enemy attacks.
जब हम निर्बल हो जाते हैं, शत्रु आक्रमण करता है.
Jesus is physically weakened after 40 days of fasting.
40 दिनों के उपवास के पश्चात शारीरिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह निर्बल हो गए.
He says, "If you are the Son of God."
और शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है.
Always questioning the authority of Jesus.
हमेशा प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को वो प्रश्न कर रहा है.
Like in the garden, he said, "Did God really say that?"
और उसके अधिकार को उसने अदन की वाटिका में भी चुनौती दिया. कहता है, क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ना खाओ?
And Jesus' reply was, "Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God."
प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मनुष्य न केवल रोटी ही के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा.
Without the word of God, you will become very weak.
परमेश्वर के वचन के बगैर प्रयोग आप बहुत ही कमजोर हो जाएंगे.
Go without food for 1 week and tell me how strong you feel.
प्रयोग एक सप्ताह बिना भोजन के बाहर निकल जाइए, उसके बाद बताइए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है.
You'll feel very weak.
आप बहुत निर्बल महसूस करोगे.
Even getting up one little flight of steps will be a real chore for you.
दो चार सीढ़ी के कदमों को चलने के लिए भी आपको बड़ा तकलीफ हो जाएगा.
But we'll go a week without meditating on the word of God and we don't realize how weak we've become.
एक सप्ताह बीत गया, परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते हैं और महसूस भी नहीं करते कि हम आत्मिक दृष्टि से कितने कमजोर हो गए.
Even if you go 1 day without food, you become weakened.
एक दिन भी यदि हम परमेश्वर के वचन के बगैर जाते तो हम कमजोर हो जाते हैं.
It's the same thing with the word of God.
परमेश्वर के वचन के साथ भी वही सिद्धांत है.
And everybody around you will see your weakened state.
प्रियो, आपके चारों तरफ लोग जो घेरे हुए सब लोग देख लेंगे आप कैसे निर्बल होते जा रहे हैं.
And the enemy will attack.
और तब शत्रु आक्रमण करेगा.
This is why I hope you've made a commitment this week to read the Bible and meditate on it every day.
और इसलिए मैं आशा रखता हूँ प्रियो, इस सप्ताह के दौरान आपने ऐसा निर्णय लिए होंगे, अब से आगे हर रोज पवित्र शास्त्र बाइबल पर मनन करेंगे.
Joshua chapter 1 verse 8.
Joshua, pehla adhyay, 8th vachan.
This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that's written in it. For then you'll make your way prosperous, and then you'll have success.
व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा.
If you meditate on this word, you will be prosperous and have success.
यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, आप समृद्ध हो जाएंगे, प्रभावशील होंगे.
Daily But his idea, Jesus' idea of prosperity and success is not material things.
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस शब्दों के अनुसार या उसके अनुसार जो वस्तुओं की समृद्धि है ये उसका विचार नहीं है.
Luke 9:58. And Jesus said to him, "The foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head."
यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं.
Jesus had no home in which to lay his head.
प्रभु यीशु मसीह के पास कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर वो सर टेक सके.
In 1 Timothy chapter 6 verse 8.
पहला तिमोथी 6 अध्याय और उसके 8 वचन में.
If we have food and covering, with these we shall be content.
कहता है यदि हमारे पास वस्त्र और खाने के लिए भोजन हो तो इसी में हम संतुष्ट रहें.
That's all he promises us is food and covering.
बस इतना ही वो हमें प्रतिज्ञा देता है, भोजन देगा, वस्त्र देगा.
If you walk with God, he promises you food and covering.
यदि आप प्रभु के संग चलते रहोगे, आपको भोजन और वस्त्र की प्रतिज्ञा देता है.
If you have a home, that's an extra blessing.
यदि आपके पास घर है, तो वो extra आशीष है प्रभु की.
The word of God never even promises us a home.
प्रियो परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी एक घर की प्रतिज्ञा नहीं दी गई है.
Jesus himself had no home.
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के खुद का एक घर नहीं था.
Just food and clothing is all he promises.
प्रियो इतना ही उसकी प्रतिज्ञा है, बस वस्त्र दूंगा, भोजन दूंगा.
But what he promises us is so much richer.
लेकिन जो प्रतिज्ञा वो करता है प्रियो वो सचमुच में ऐश्वर्य की बात है.
Because he promises us himself.
क्योंकि वो अपने आप को हमारे लिए प्रतिज्ञा के रूप में दे दिया.
He promises us himself.
वो अपनी प्रतिज्ञा हमको दे दिया, मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा.
John 14:23. Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him."
यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे.
If anyone loves me, he will keep my word.
यदि कोई मुझसे प्रेम करे वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा.
Jesus measures our love for him by our keeping of his word.
जिस मात्रा में हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं उसी माप में हमारे प्रेम को वो जान सकता है.
Jesus is our all in all.
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वस्व है.
And if we keep his word,
यदि हम उसके वचन को मान लें,
he says, "My Father will love him."
कहता मेरा पिता उससे प्रेम करेगा.
If you keep the word of Jesus, his Father will love you.
यीशु मसीह के वचन को यदि हम मान लेते हैं तो उसका पिता हमसे प्रेम करेगा.
I'm a professor, so many students try to get me to like them.
मैं प्रोफेसर हूँ और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी ऐसा कोशिश करते हैं कि मैं उनको पसंद करूँ.
And I tell them, if you want me to like you, be nice to my children.
मैं उनसे कहता हूं यदि तुम चाहते हो कि मैं तुमको पसंद करूं तो मेरे बच्चों के साथ सही व्यवहार करना।
If somebody's nice to my children, I like them.
यदि कोई मेरे बच्चों से प्रेम करता है तो मैं भी उनको बड़ा पसंद करता हूं।
God the Father is the same way. You be nice to Jesus, He likes you.
हाँ, परमेश्वर पिता भी ऐसी है। आप यीशु के संग अच्छा रहिए, वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा।
You keep the word of Jesus, the Father will love you.
यदि यीशु के वचन को मान लेंगे, पिता आपसे प्रेम करेगा।
When my children were in school, some students would come over and help them with their homework.
जब मेरे बच्चे स्कूल में थे, तो उनके कुछ विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी आकर कुछ होमवर्क में मदद करते थे।
You may ask, why didn't I just help them?
आप पूछ सकते हैं कि मैंने खुद क्यों नहीं मदद किया उनकी?
I have very little patience. I just say, here, that's how you do it.
मेरे पास धीरज की बड़ी कमी है। यदि वो मेरे पास आते तो दो लाइन लिख के बोलते तो बस यही है।
I don't teach children.
मैं बच्चों को नहीं सिखा सकता।
I just walk in, lecture for a while, walk out, and they send me my check in the mail.
मैं अंदर प्रवेश करता हूँ, चलते फिरते एक लेक्चर दे देता हूँ, वापस दरवाजे से निकल गया और मेरा उनका चेक मेरे मेल में आ जाता है।
But the students that would come over and help my children with their homework, I really like them.
लेकिन जब विद्यार्थी आकर मेरे बच्चों के होमवर्क में मदद करते हैं तो मेरा मन बड़ा खुश होता है।
And my wife really liked them.
Oh, मेरी पत्नी भी उनसे ऐसा ही प्रेम करती है।
And she would make a beautiful meal for them while they're helping my children with their homework.
और वे मेरे बच्चों की मदद कर रहे होमवर्क में उसी समय मेरी पत्नी उनके लिए भोजन तैयार करती है।
And I always wrote letters for those students to get good jobs.
और जो अच्छी नौकरी मिलते हैं उनके लिए मैं लेटर रिकमेंडेशन भी लिखता हूँ।
You're nice to my children, I'll like you.
आप मेरे बच्चों से बड़ा अच्छा व्यवहार के मैं भी आपको पसंद करता हूँ।
If you're not nice to my children, I don't like you.
यदि मेरे बच्चों के साथ आप सही व्यवहार नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल मैं पसंद नहीं करूंगा।
God the Father is the same way concerning His Son.
प्रियो अपने बेटे के विषय में परमेश्वर पिता का भी यही एक प्रकार का विचार है।
If you keep the word of Jesus, the Father will love you.
यीशु मसीह के वचन को यदि आप मान लोगे, पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा।
And it says, and we will come to him and make our abode with him.
और आगे कहता है कि हम दोनों आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे।
Who is the we? That is Jesus and his Father will come and make their abode with you.
हम का मतलब मैं और मेरा पिता, यीशु मसीह और यीशु का पिता, हम आकर आपके साथ निवास करेंगे।
They will come to you.
वे आपके पास आएंगे।
You don't have to go to them, they come to you.
आपको उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, वे आपके पास आएंगे।
They say, don't trouble yourself. We're coming to you.
वो कहेगा मानो जैसे भैया परेशान मत होना, हमारे आपके पास।
You keep the word of Jesus. Jesus and his Father will come and live with you.
यीशु मसीह के वचन को मान लीजिए, यीशु और अपने पिता के साथ दोनों आएंगे, आपके साथ निवास करेंगे।
He does not promise us material things, but he promises us himself.
प्रियो संसार की वस्तुओं को दूंगा, ये प्रतिज्ञा उसने नहीं किया, लेकिन मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, ये प्रतिज्ञा उसकी है।
Psalm 112, verse 1 and 2.
Bhajan Sahita 112, 1 aur 2.
Praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed.
Yah ki stuti karo. Kya hi dhanya hai vah purush jo Yehovah ka bhay manta hai aur uski aagyaon se ati prasanna rehta hai. Uska vansh prithvi par parakrami hoga. Seedhe logon ki santan aashish payengi.
We spend so much money on the education of our children. And that is a good thing because it's one of the few investments that will outlast our lives. Every student that comes to the university, I look at them and I know that they have been deeply invested in by their parents. Tens of thousands of dollars just to get them to the university. All the things that parents do to develop their children. You buy them clothing, you get them tutors, you feed them well. But don't forget the most important thing. If you greatly delight in His commandments, your descendants will be mighty on this earth. And your generation will be blessed. You delight in the word of God and blessing from God comes down upon your children. So when you meditate on the word of God, remember that's not just for yourself, that's for your children too.
इस बात को महसूस करिए कि केवल अपने लिए नहीं लेकिन आपके बच्चों के लिए भी करते हो
Remember, heaven and earth will move in order to keep God's word.
परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए प्रियो आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे
When God makes a promise to us, everything must move in order for that promise to take place. Matthew chapter 4 verses 5 through 7.
Matthew 4 verses 5 through 7.
Then the devil took him into the holy city and had him stand on the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels charge concerning you, and on their hands they will bear you up so that you will not strike your foot against a stone. And Jesus said to him, on the other hand, it is written, you shall not put the Lord your God to the test.
तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर।
So Satan takes Jesus up to the top of the temple and he says, go ahead, jump off, because it is written in the Bible, it is written that God will protect you.
शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के उस कंगूरे पर लेकर गया और अब कहता है, इसलिए कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, यहां से तो कूद जा।
So the devil himself is quoting the Bible.
शैतान देखिए वो भी पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को बोल रहा है।
But the devil's quotation is very selective.
लेकिन शैतान जो वचन को उठाता है वो कुछ विशिष्ट वचनों को फंसाने के लिए।
Let's look at Psalm 91 verses 11 through 13.
पढ़ते हैं क्या लिखा असल में भजन संहिता 91 उसका 11 से 13।
For he will give his angels charge concerning you to guard you in all your ways. They will bear you up in their hands that you do not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and the cobra. The young lion and the serpent you will trample down.
क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।
So the devil quotes verses 11 and 12, but doesn't touch verse 13.
शैतान ने 11 और 12 वचन का उल्लेख किया, लेकिन 13 वचन को उसने छुआ तक नहीं।
Because verse 13 speaks of the devil's destruction.
क्योंकि 13 वचन में शैतान का नाश बताया गया है।
You will tread upon the lion and cobra, the young lion and the serpent you will trample down.
सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।
So Satan does not fool Jesus.
शैतान प्रभु यीशु मसीह को मूर्ख नहीं बना सका।
Jesus says, on the other hand, you shall not put the Lord your God to the test.
और दूसरे उसके अवज में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना कर।
Jesus said, it is written, you should not put the Lord your God to the test.
यीशु मसीह ने कहा, ऐसा भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना कर।
Satan is getting at the fundamental question that people have, will God really take care of me?
प्रियो, शैतान की परीक्षा यहां पर क्या है मालूम? मूल रूप से मनुष्य के जीवन में ये विचार होता है कि वास्तव में परमेश्वर मेरी रक्षा कर सकता है क्या? उसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा है।
Jesus himself went through suffering.
प्रभु यीशु मसीह स्वयं दुखों में से होकर गए।
He does not keep us from suffering.
वो भी हमें दुखों से जाने से रोकता नहीं है.
Isaiah 53 verses 2 through 4.
Yeshaya 53 adhyay 2 3 aur 4.
For he grew up before him like a tender shoot and like a root out of parched ground. He had no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised and we did not esteem him. Surely our griefs he himself bore and our sorrows he carried.
क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले. उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था. वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसके मुख फेर लेते थे. वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा.
Jesus himself went through suffering.
प्रभु यीशु मसीह स्वयं दुखों में से गए.
It calls him a man of sorrows and acquainted with grief.
इसीलिए उसको दुखी पुरुष, रोग से जान पहचान उसकी थी, ऐसा कहा गया.
He had no stately form or majesty that we should look upon him.
बाह्य रूप से भी देखा जाए तो उसके अंदर कोई सी भी ऐसी सुंदरता नहीं थी, कोई सा भी ऐसा वैभव नहीं था कि हम उसको चाह सके.
Nor appearance that we should be attracted to him.
ना उसका बाह्य अवतार या सुथा प्रयोग कि हम आकर्षित होते.
I don't know what your image is of Jesus, but this word says there was nothing in him physically that attracted people to him.
प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपकी कल्पना क्या मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इस वचन के अनुसार यह ऐसा मालूम पड़ता है कि बाह्य रूप से ना उसकी कोई रूप थी, ना उसकी कोई सुंदरता, ना उसके अंदर कुछ ऐसा बाह्य रूप से था कि हम आकर्षित होते या उसको चाह सके.
The attractiveness of Jesus had nothing to do with the way he looked.
प्रियो प्रभु यीशु मसीह के आकर्षण करने वाली जो शक्ति थी वो बिल्कुल बाह्य रूप में नहीं थी.
It says he had no appearance that we are attracted to him.
बिल्कुल स्पष्ट लिखा है बाह्य रूप उसका ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम उसके प्रति आकर्षित हो सके.
I have heard messianic Jewish scholars, that's believing Jewish believing scholars, say that they feel the Messiah was a short man with crooked teeth.
Jewish messianic scholars, मतलब यहूदी मत से प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानकर और से बड़े-बड़े विद्वानों से मैंने जब बात किया तो उनका ऐसा कहना है, मुझको भी नहीं मालूम, कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कद थोड़ा छोटा सा था और उसके दांत बिल्कुल उल्टे सीधे थे. क्रिश्चियन यहूदी मत में से जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए उनको मेसियानिक ज्यूज कहते हैं.
There was nothing in him physically that attracted people to him.
शारीरिक तौर पर बाह्य रूप से ऐसा कोई भी ऐसा गुण लक्षण नहीं था कि लोग उसको देखकर आकर्षित हों.
शरीर के लिए कुछ नहीं कहते, बाह्य लिंग आई एम टू जी आई एम वन ऑफ
Have you ever been upset about the way you yourself look?
भाइयों बहनों, क्या आपने कभी भी अपने चेहरे को देखकर या अपने कद को या अपने सब कुछ को देखकर परेशान हो गए कि परमेश्वर ने मुझको ऐसा क्यों बनाया?
This word tells us that Jesus looked in a way that was not attractive to anybody.
ये वचन हमको सिखाता है प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे अवतार लेकर आए थे जिसको बाह्य रूप से देखकर कोई भी आकर्षित नहीं हुआ.
It even goes on to say in verse 3, he was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face.
आगे चलकर तीसरे वचन में कहता है, वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ, दुखी पुरुष, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे.
It says twice in verse 3 that he was despised. He was despised, he was despised.
दो बार तीसरे वचन में आया देखिए वो तुच्छ जाना जाता फिर अगर आखिर सेंटेंस में वो तुच्छ जाना गया.
And he was like one from whom men hide their face.
जब लोग उसको देखते थे तो ऐसा मुंह मोड़ लेते थे.
It says they did not esteem him.
कहता है उसके कीमत को उसके मूल्य को लोगों ने नहीं समझा.
Have you ever been unsatisfied with the way that you look?
कभी आपको महसूस हुआ प्रियो कि इस रीति से परमेश्वर मुझको क्यों बनाया और आप परेशान थे?
Well, look at the description of our Lord.
देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का वृतांत कैसे बताया गया.
He does not promise to keep us from pain and suffering.
दुख से दर्द से हमको बचाएगा ये प्रतिज्ञा बिल्कुल उसने हमें नहीं दिया.
But what he promises us is to keep us from the despair of suffering.
लेकिन प्रियो दुख के द्वारा जो निराशा आती है परेशान मन हम हतोत्साहित हो जाते हैं उससे मैं तुमको बचाकर रखूंगा.
It says in verse 4, surely our griefs he himself bore and our sorrows he carried.
चार वचन में निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया.
You take those inadequacies that you feel and lay it at the cross.
प्रियो जो कुछ अपने जीवन में चाहे अंदर की बात हो बाहर की बात हो आपने कमी महसूस किया उन कमियों को कलवरी के क्रूस के पास डाल दीजिए.
He said, give that to me, I'll carry that for you.
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चल लाओ मेरे पास तुम्हारी सारी कमी घटियों को मैं उसको उठाकर क्रूस पर चला जाऊंगा.
He keeps us from the despair of suffering or from giving up in the time of suffering.
दुखों के द्वारा जो निराशा आती है या कभी कभी हम हार के पीछे मुड़ जाते हैं ऐसी अवस्था से मैं तुमको बचा लूंगा.
Matthew 4 verses 8 through 11.
मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 8 से 11.
And again the devil took him up to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give to you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, go Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and behold, angels came and began to minister to him.
फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे।
Satan shows to Jesus all the riches of the world and their glory, and he says, I'll give it all to you if you fall down and worship me.
शैतान ने उसको ऊपर ले जा रहा और संसार के सारे महिमा और वैभव को धन दौलत को दिखाकर कहता है, एक बार यदि तू मुझे गिरकर दंडवत करे, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा।
But Jesus said, it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only.
लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना और उसकी सेवा करना।
When Satan attacks you, you take a verse and you pull it in and make it personal to yourself.
शैतान आक्रमण करता है, पवित्र शास्त्र में से कैसे वचन को लेकर प्रयोग अपने हृदय में समाकर उसी के द्वारा उसको आक्रमण करें।
That's why we meditate on the word of God. You draw it in and you do battle and defeat the enemy.
इसी कारण हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं प्रियो, उस वचन को अपने आप ले लेते हैं और उसी हथियार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करते हैं।
You shall worship the Lord your God and serve him only.
तू अपने परमेश्वर यहोवा को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना।
So everything was offered to him, and Jesus is saying, that has no attraction for me, there's no fulfillment in all those riches you offer me.
शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ दिखा दिया, महिमा वैभव और संसार का सब कुछ, लेकिन प्रभु बोलता है, इसमें मुझको कोई रुचि नहीं है और इसके द्वारा मुझको कोई भी भरपूरी नहीं चाहिए।
Some young men think, if I could just get that girl for a wife, then I'll be forever happy.
एक जवान ऐसा सोचता है मन में, वो लड़की यदि मुझको मिल जाए पत्नी के रूप में, मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा।
And women feel that if I can just get that really handsome guy, I'll be forever happy.
और लड़की भी सोचती है, भैया वो लड़का यदि मुझको मिल जाए तो मैं जीवन भर खुश रहूंगी।
Nothing on this earth will ever bring you fulfillment.
पृथ्वी के ऊपर कोई सी भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु नहीं है प्रियो, जो आपके जीवन को तृप्त कर सके, भरपूर कर सके।
Jesus said there's only two things that bring fulfillment, and that is worship and service.
दो ही बातें जिसके द्वारा आपके जीवन को परिपूर्णता मिलती है, भरपूरी मिलती है, एक है उसकी आराधना करना और दूसरा उसकी सेवा करना।
You offered me everything in the world, it means nothing, because only worship and service will bring fulfillment in the human life.
दुनिया का सब कुछ आप मुझे दे दीजिए, उसकी कोई परवाह नहीं मुझके, क्योंकि जीवन की भरपूरी और जीवन में जो परिपूर्णता है केवल परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सेवा से मिलता है।
Thank you. Solomon had everything and he filled his heart with everything he wanted Suleiman, and he was a totally dissatisfied man.
Suleiman ke paas sab kuch tha, jo kuch usne man mein chaha, jo kuch uske man ka vichar tha, sab kuch usne pura kiya, phir bhi asantrupt tha.
Solomon ko ye daiti kavalanukunnado, ye daiti cheyalanukunnado, samastamu andubatlo unnai kani vaati vanna athanu santrupti chendalekapoyadu.
Psalm 16 verse 11.
Bhajan sahita 16 aur uska 11.
You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand are pleasures forevermore.
Tu mujhe jeevan ka rasta dikhayega. Tere nikat aanand ki bharpuri hai. Tere dahine haath mein sukh sarvada bana rehta hai.
In the presence and the worship of God, there is fulfillment.
Parmeshwar ki upasthiti mein, parmeshwar ki aradhana mein, hamare liye ek prakar ki santrupti hai.
This is why we worship like we did today, because it fulfills the human heart as we worship God.
Yahi karan hai priyo, aaj subah jaise humne aradhana kiya, jaise parmeshwar chahta hai, waisa yadi humne kar diya, hamare hriday ko wo bhar deta hai.
But worship alone will not be sufficient. It must be coupled with service.
बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा. केवल मुंह से हमने शब्दों को कहकर आराधना कर दिए, ये पर्याप्त नहीं है.
Oh, he's done. Okay. It's only in the coupling of worship and service.
केवल आराधना करना पर्याप्त नहीं है. इस आराधना को यदि सेवा के साथ हम जोड़ देते हैं और दोनों जोड़ी बराबर चलते हैं, तभी इसकी संतृप्ति है.
This is why we join a church, the body of Christ.
यही कारण है प्रियो, को कलीसिया को बार बार हम इकट्ठा करते हैं.
We must have an avenue both for worship and for service.
प्रियो, आराधना के लिए और सेवा दोनों के लिए हमारे मन के अंदर एक बड़ी उमंग होनी चाहिए.
Jesus said the only thing that will fulfill a human being is both worship and service together.
प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, एक मनुष्य के हृदय को तृप्त करने वाली केवल दो ही बातें हैं, एक वो मेरी आराधना करे और दूसरा उसकी सेवा करे.
You get involved with the local church and you serve.
प्रियो, स्थानीय कलीसिया के साथ हम मिल जाते हैं और कुछ न कुछ सेवा करते हैं.
And at first sometimes you have to try different things in serving.
प्रियो, सेवा करते हुए कई बार कई बातों में हाथ लगाना पड़ता है.
And then you'll see what you're good at.
और उसके बाद मालूम पड़ता है कि मैं किस में वो थोड़ा सा हुनर मुझको है या किसके लिए मुझको विशेष क्षमता है.
One of the first ways I started serving was in the nursery at the Holy Convocation in New York.
न्यूयॉर्क में जब होली कॉन्वोकेशन हो रहा था, सेवा करना मैंने सबसे पहले नर्सरी से शुरू किया.
They said that there was nobody to serve in the nursery, so I said, I'll serve. And so I went and served in the nursery.
उन्होंने कहा, भैया नर्सरी में सेवा करने के लिए काम करने के लिए कोई नहीं है, तो मैंने बोला, ठीक है, मैं खुद करूंगा.
And I got there, I was the only person.
मैं जब वहां पर गया तो मैं अकेला था.
And mothers started bringing their children.
और माताएं जो है बच्चों को लाने लगे.
And they would look at me.
वो मेरी ओर देखते थे.
And they stop.
वो रुक जाते हैं.
And they turn around and go.
और वापस जाने के लिए तैयार होते हैं.
And they take their child with them.
और बच्चे को भी अपने साथ ले जाते हैं.
This is true. None of them came.
ये सच बात है, कोई नहीं आया वहां पर सेवा करने के लिए.
This was at the Holy Convocation 1979.
ये 1979 की बात है, 1979 Holy Convocation की बात है.
And then one lady came, her daughter was asleep.
और एक स्त्री आई और उसकी बेटी सो रही थी.
So she put her on the bed and she said, just let her sleep. I said, okay.
वो आई और बिस्तर पर उसको लिटा दी और मुझसे बोल गई, इसको परेशान मत करना, बस ऐसे ही सोने दो.
So when the mother left, I was afraid that the baby would roll off the bed.
और जब माता चली गई तो मुझे मेरे मन में डर आया, भैया कहीं करवट बदलकर बच्ची लुढ़क न जाए बिस्तर से.
I don't know anything about children and nothing at that time because I'm the youngest in my family.
मेरे परिवार का सबसे छोटा मैं हूँ. बच्चों के विषय में जरा से भी जानकारी मुझको नहीं है, क्या करना चाहिए.
So I pushed a cabinet against the bed and surrounded it with cabinets that were this high so the baby could not roll off.
वहां पर कैबिनेट्स थे, उसको मैंने क्या क्या खींच खींच कर लाया और बिस्तर के चारों तरफ खड़ा कर दिया और मैंने सोचा बच्ची लुढ़केगी भी तो नीचे नहीं गिरेगी.
And the mother was having some second thoughts, thinking, where have I left my daughter? And she came back in 5 minutes.
Mata chali to gayi, lekin shayad uske mann mein vichar aaya hoga, kyun main apni bachchi ko wahan par chhod di, isliye 5 minute mein fir wapas aa gayi.
And she said, what did you do? I said, well, I was afraid the baby would roll off, so I put the cabinets there. I was very proud of myself.
उसने पूछा, भैया तूने क्या किया है सर? मैंने बोला, मुझे मेरे मन में डर था कि कहीं करवट बदल कर लुढ़क के गिर जाएगी, इससे मैंने सारे कैबिनेट्स को उसकी रक्षा के लिए लगा दिया.
And the mother said, oh, and she sat there the whole time, would not leave the side of her daughter.
जब तक बच्ची सो रही थी, माता गई नहीं, वहीं पर बैठ गई वो भी.
And I realized serving in the nursery was not a good job for me.
तब मुझको महसूस हो गया, बच्चों की देखभाल करना वो मेरे बस की बात नहीं.
When you're in the right role of service, you're usually good at it.
प्रियो, कभी कभी जब सही काम आपको मिलता है तो बड़ी होशियारी के साथ आप कर सकते हैं.
You enjoy it.
आप उसमें आपको बड़ा आनंद आता है उसको करने में.
But just enjoying it is not enough.
केवल उस काम में आनंद मगन होना उतना ही काफी नहीं है.
Because if you think you have a gift of singing and nobody else agrees, that's not the service for you.
आप सोचते हैं मेरा जो वरदान है गीत गाने का है, खड़े हो गए गीत गाने के लिए, लेकिन सामने वाला कोई भी आपको पसंद नहीं करता, ये सेवा नहीं है.
So you will find that you enjoy it and you're good at it when you settle in the right place of service.
जब सही काम में आपको मौका मिलता है और वहां पर आप नियमित रूप से करते रहोगे, तब आपको महसूस होगा कि सेवा करने में कितना बड़ा आनंद है.
And it changes at different stages in your life, like young men should be carrying things when they're young and strong.
प्रियो, आपके जीवन में कभी कभी समय के अनुसार चीज बदलते रहते हैं. जब आप जवान रहते हैं आप थोड़ा भार भी उठा सकते
हैं. Brother Boxing always used to share. He would ask the question, do you know the first job of young men in the church?
Bhai Bhakti hamesha ek prashn poochte the jawanon se, bhaiya కలీసియా మే జవాను కో సబ్సే పెహలా కామ్ క్యా హై ఆప్కు మాలూమ్ హై
సోదరుల బక్సింగ్ గారు ఎప్పుడు అడుగుతుండేవారు సంఘంలో మొట్టమొదటిగా యవనస్థుల మొదటి పని ఏంటో తెలుసా అని అడుగుతుండేవారు.
And you know that brother, right? He always used to talk about the first job. You know that? It was burying the dead. Ananias and Sapphira, the young men took them out and buried them.
Ye murdo ko gaadna kyunki Hananiah Sapphira jab mar gaye the to jawan log aakar unke shav ko utha kar unhone dafna diya.
Aapne to nahi dekha endante Ananiah Sapphira chalte apnu yavanastu hankamga chesin endante vachi var savam lekin koi baat nahi uthai.
So Jesus stresses to us that satisfaction in life will come through worship of God and service.
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन में संतृप्ति और सुख तब मिलता है जब हम उसकी आराधना करते हैं और उसकी सेवा करते हैं.
And both of these come through being in the body of Christ.
और ये दोनों काम तभी संभव हैं जब हम मसीह के देह में एक हो जाते हैं.
How many people here, I want you to raise your hand because it encourages me, gave your life to the Lord during this convocation?
Mujhko ye protsahan milega jankar is pavitra mahasabha ke dauran kitno ne apne jeevan ko prabhu ke haathon mein saunp diye. Aap haath upar dikhayenge to mujhko protsahan milega. Is pavitra mahasabha ke dino mein pichle saptah mein kitno ne apna jeevan prabhu yeshu masih ko saunp diye.
Put your hand up. Praise God. Praise God. Beautiful. Beautiful. Now it's time you become incorporated in the body of Christ.
Bahut achhi baat hai. Ab samay aa gaya hai ki masih ki deh mein aap ek ho jaye.
Because the enemy will attack.
Kyunki shatru aakraman karega.
And you have the body of Christ to support you.
Oh, parve prabhu yeshu masih ki deh us samay aapko aadhar degi.
And part of your development is learning to worship with the body of Christ and serve in the body of Christ.
Aur aapke jeevan ka vikas vyaktigat aapke aatmik jeevan mein vikas kriyo prabhu yeshu masih ki aaradhana karna aur uski seva karne ke dwara hoga. Aaj
prabhu yeshu masih ka aaradhana dwara aaj
And if perchance there is someone who has not yet received the Lord, we're going to pray again and you receive the Lord now. Do not leave this convocation without receiving Jesus.
Aur yadi priyo durbhagyavash aisa yadi koi hai yahan par jo abhi tak udhar nahi paya hai prabhu yeshu masih ko grahan nahi kiya hai ek bar aur aapke liye prarthna karenge aap zarur prabhu ko grahan kariye.
It says in Romans chapter 10 verse 9.
Romiyon ka 10 adhyay 9 vachan.
If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart he's risen from the dead, you shall be saved.
Yadi tu apne muh se angikar kare ki Yeshu Prabhu hai aur apne hriday mein vishwas kare ki wo mare hue mein se jee utha, tera udhar hoga.
And Isaiah 43 verse 25.
Yeshaya 43 aur uska 25.
I am the one who wipes out your transgressions for my own sake and I will remember your sins no more.
Main wahi hu jo apne naam ke nimitt tere apradho ko mita deta hu aur tere paapon ko smaran na karunga.
I am going to pray, and if you've not yet received Jesus, you pray with me to ask Jesus into your life and say, Lord, I believe in you.
यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहूंगा उस समय आप भी प्रार्थना करिए हे प्रभु यीशु आज मैं आपको अपने हृदय में स्वीकार करता हूँ.
Let's pray. So I want the sinners here who have not yet received Jesus to pray with me. Lord Jesus, forgive me because I am a sinner. Wash me by the blood of Jesus. I believe that Jesus is Lord. And I believe He's risen from the dead. Thank you, Lord Jesus, for your forgiveness. And fill me to overflowing with the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for your salvation. And Lord, now I pray for all the saints here. That you cover, bless, and protect them. That they learn to meditate on your word. And that they commit to daily meditation on the Word of God. And Father, for the new believers that have accepted Jesus in this convocation, cover and protect them. Father, I pray that they would get built up well in the body of Christ. That they would take this profession of faith and let it grow through worship and service. And Father, for those here who have struggled with the way that they look in their physical appearance, Lord, I pray that they'd learn to lay that at the feet of Jesus. Because in Jesus there was nothing that was physically attractive. But He was so filled with the life of God that He drew men to Himself. And Father, as these precious ones travel home, guide them safely, I pray. Protect them from the hand of the evil one. And let them be filled to overflowing with the grace of God. I commit them into your loving hands in the name of Jesus. Amen.